वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्मिते यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् भक्त्याविहीनापरादलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवतम्। कल हम लोगों ने श्रीमद्भागवत का प्रारंभ किया और सुखदेव जी का और व्यास जी का संवाद में कैसे भक्ति होती है और कैसे श्रीमद्भागवत का प्राकट्य हुआ इसके संबंध में संक्षेप में कुछ बताया गया। अब और आगे स्कंद में बढ़ते हैं तो एक से लेकर के श्रीमद्भागवत के नौवें स्कंद तक ज्ञान और वैराग्य के संबंध में बतलाया गया है। जो भक्ति के पुत्र हैं, भक्ति नहीं किंतु भक्ति के पुत्र, कल ज्ञान और वैराग्य के संबंध में ही मैंने बतलाया था। ज्ञान और वैराग्य होने से भी भक्ति नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि ज्ञान वैराग्य हो जाने से ही भक्ति होगी, किंतु भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप हो जाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए भक्ति के लिए चेष्टा करना चाहिए, पृथक रूप में ज्ञान और वैराग्य के लिए चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद्भागवत के अनुसार में गीता 6 दिन पहले की बात, 1 सप्ताह पहले की बात और आज की बात में बहुत कुछ अंतर देखता हूँ। 6 दिन पहले की बात है, कल बतलाया था, ये कल बतलाया था हमने, ये अब कलयुग आने वाला है और अर्जुन आए जी कृष्णचंद्र जी अब परलोक को छोड़ करके अब जाने वाले हैं। इधर में क्या होता है कि विदुर जी उनके यहाँ पधारते हैं। विदुर जी पूर्व जन्म में धर्मराज थे, वो सत्य असत्य का विचार करके, पाप पुण्य का विचार करके जीवों को दंड देते हैं, किंतु थोड़ी सी गलती के लिए उनको इस जगत में आकर के शूद्राणी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। एक समय की बात है कि एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, ऋषि थे, वो किसी वन में तपस्या कर रहे हैं। इतने में 4 चोर चोरी कर चोरी के माल के सहित उनके आश्रम में चोरी का माल छिपा करके और पासी के झाड़ी में छिप गए। इतने में राजा के सिपाही उनका पीछा किया और पीछा करते 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 उस ऋषि के आश्रम में पहुंचे और माल को वहां पर देखा, सोचा कि चोर भी यही होंगे। बस चोरों को खोजते 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 माल सहित चोरों को बरामद किया और देखा जैसे ये ऋषि उनमें भी सहायक जरूर होगा। बस ऋषि को भी गाली गलौज करने लगे, यहाँ तक कि थप्पड़ और लात मारने लग गए। इन्होंने आँख खोल दिया, भाई क्या बात है, अतः आपने चोरी की और साधु बन रहे हैं। बस उन 4 चोरों के साथ में इसको भी पकड़ लिया और राज दरबार में उनको हाजिर किया। उन्हें कही 5ों को सूली दे दो, उनकी फांसी हो जाए। बस 4 चोरों को तो सूली दी, वो सूली देने के साथ ही साथ में मर गए। किंतु महात्मा जी को जब उठाया सूली पर तो वो मरे नहीं, बहुत देर तक रुके रहे। इस पार से लेकर के नीचे से ऊपर तक छिद गया, किंतु मरे नहीं। राजा ने कहा जल्दी जल्दी इनको उतारो, ये चोर नहीं है, ये महात्मा है। बस जल्दी से उतारा गया और सुल को निकाल लिया गया। महाराज जी ने उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको अब हम छोड़ देते हैं और आपकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करते हैं, आप हम पर अभिशाप हमें न देंगे, हम भूल से आपको पकड़ करके हमारे सिपाही लोग ले आए। ठीक है, आपको अब अभी संपात नहीं दूंगा, किंतु हमारे किस भूल के लिए ये ऐसा मुझे दंड भोगना पड़ा, और मैं इसके जो मूल व्यक्ति हैं उनके पास नहीं जाऊंगा। कुछ देर के बाद में जब ठीक ठाक हो गए, यहाँ से पहुंचे स्वर्गलोक में और वहां पर धर्मराज के पास में गए, उनको देख करके वो कुछ सहमे और उन्होंने कुछ कहा ऋषि ने, महाराज हमको किस लिए ये दंड मिला, हम जानते हैं कि इस जीवन में हमने कोई भी पाप नहीं किया, किंतु ऐसा दंड क्यों मिला। तो वो चिंता करने लगे और चिंता करके फिर बतलाया, आपने पूर्व जन्म में एक तितली को पकड़ लिया, तितली होती नहीं छोटी सी, तितली को पकड़ लिया और उसमें कांटे आपने घुसा दिए उसके शरीर में और फिर उसको निकाल लिया था आपने हंसी के में। उस समय आपकी उम्र 3-4 वर्ष की होगी मुश्किल से। वो 3-4 वर्ष की उम्र में मैंने अज्ञानतावश एक तितली को पकड़कर उसको छेद कर दिया, इसलिए हमको ऐसा दंड मिला। वो आपका जगत का अनुभव नहीं है, आप धर्मराज होने योग्य नहीं है, आप पृथ्वी में जन्म लेकर के सुख दुख भोगिए तब समझेंगे। वो है विदुर जी, उन्होंने कौरवों को और पांडवों को युद्ध होने से पहले कौरवों को बहुत समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, किंतु अंधे धृतराष्ट्र जी नहीं समझ सके। जो राष्ट्र धारण करने वाला होता है उसको आंख होनी चाहिए, अर्थात सम में समभाव होना चाहिए, किंतु धृतराष्ट्र इसलिए अंधे हैं कि राज्य भोग में ऐसे पड़ गए जो परमात्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं था। आत्मा क्या है, आत्मा क्यों दुखी है, संसार से हम सुखी नहीं रह सकते हैं विषयों से, इनको उनको पता नहीं है। राष्ट्र को धारण किया इसलिए वो धृतराष्ट्र हैं, अथवा राष्ट्र के द्वारा वो धारण पकड़े गए हैं, राष्ट्र ने उनको पकड़ रखा है, उनकी आंखें बंद कर दी हैं, वो भविष्य में हमारा क्या होगा इस पर उनकी नजर नहीं है, बस अपने पुत्रों के लिए सब कुछ करते हैं। पांडवों को मरवाना, विष देना, सब कुछ उन्होंने किया था। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया किंतु वो माने नहीं। इसके बाद में वो जब देखा जो युद्ध होना अनिवार्य है तो वहां से छोड़ करके चले गए और कितने बरस तक वो घूमते रहे तीर्थों में, घूमते घामते घामते जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो लौट करके हस्तिनापुर के समीप आए और इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के यहाँ पर पहुंचे। इन लोगों ने अपने चाचा जी को देख करके बड़ा आदर किया और लेकर के सिंहासन पर बैठा दिया। वो आज हमारा परम सौभाग्य है, संतों का मिलना ऐसे नहीं होता है। संतों को तो गृहस्थों से कोई जरूरत नहीं है, किंतु गृहस्थ लोग ज्यादा संसारों में फंस जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, इसलिए साधु संत लोग वहां पर पधारते हैं। तीर्थ को भी ये तीर्थ करने वाले होते हैं ये साधु संत लोग। तो आप हमारे चचा ही नहीं किंतु ऐसे महात्मा है, परम भगवत भक्त और भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, तत्व ज्ञान से संपन्न आप हैं। आज हमारे ऊपर में आपने बड़ी कृपा की। इन लोगों ने बड़ा उनका आदर जत्न किया और घर में रखा। जब शाम हो गई, मौका उनको मिला, राजमहल के अंदर में गए, देखा जो धृतराष्ट्र जी और गंधारी वहां पर बैठी हुई हैं। धृतराष्ट्र को देखा, अपने बड़े भाई को उन्होंने प्रणाम किया। धृतराष्ट्र बड़े हैं, पांडु उसके बाद में है, उससे छोटे हैं विदुर जी। ये एक शूद्राणी के गर्भ से ये पैदा हुए हैं और वो लोग क्षत्रियाणी के गर्भ से थे, किंतु बड़े नीतिज्ञ थे, धर्मराज के ये अवतार हैं, इसलिए इनकी नीतियां बड़ी सुंदर हैं। तो रात जब हुआ तो धृतराष्ट्र के पास में पहुंचे और जब ये उनको प्रणाम किया तो उनको पकड़ लिया धृतराष्ट्र जी ने और रोने लगे, हाय हमारा वन सब ध्वंस हो गया, तुमने समझाया था हमें किंतु उस समय मेरी समझ में नहीं आई, अब मैं क्या करूं। ये विदुर जी कहते हैं, अरे तुम अभी तक जीवित हो और यहां पर कैसे आ गए पांचों पांडवों के पास में? आपने तिन्हें बीच दिया, आपने बर्णावत नगर में इनको लक्षा भवन में इनको आग में जलवा करके खत्म कर देने की आपने चेष्टा की। द्रौपदी का चीर्ण हुआ आपने, चीरहरण हुआ आपने, कुछ भी नहीं कहा उस समय, चुपचाप आप अंधे जैसे बैठे रह गए। ये भी नहीं कहा रुक जाओ, अनिति तुम लोग कर रहे हो। आपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, परम धर्मात्मा पांचों पांडवों के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। आप धर्म से भ्रष्ट उसी समय हो गए। इसके पास पश्चात वही भीम, जबकि आपके पुत्रों को मारा, तो यहाँ पर आप कैसे आ गए कुत्ते जैसे यहाँ आकर के, और उसी भीम के द्वारा दी हुई रोटी को तू 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 कहके और आपको दे देता है, रोटी का टुकड़ा फेंक देता है, उस रोटी को खाते हैं, आपको लज्जा नहीं आती। अब बाकी क्या रह गया? अब तो कुल में तुम्हारे कोई है ही नहीं है जिसके लिए तुम ऐसा सोच रहे हो, अब फिर से मुझे संपत्ति मिल जाएगी, अब क्या तुमको चीज मिलेगी, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा चौथा पंथ ऐसे ही आ गया, वृद्ध हो गया, जड़ हो गया, तुम कुछ कर नहीं सकते, अब भी तो भगवान का भजन करो। तो अभी चेतो तो, यदि मनुष्य यदि अपने जड़गत शरीर को भी, अर्थात सड़े गले शरीर को भी भगवान के लिए समर्पण कर देता है उनकी सेवा के लिए, तो भगवान उसके लिए प्रसन्न हो जाते हैं। बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, और यदि नहीं करता तो जब भी उसको मौका मिल जाए तभी भगवान का भजन करे। उसमें पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगता, उम्र इत्यादि का कोई भी प्रश्न नहीं है, और तुम ऐसे भगवान का भजन नहीं करता है, इसे तुमको भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत गाली गलौज उनको दिया और बहुत समझाया, अरे तब मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं अंधा भजन करने के लिए, जल्दी से घर से निकलो, ये गृह अंधकूप है। कैसे अंधकूप है? श्रीमद् भागवत में इसको वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति कहीं जंगल में जा रहा है, जब वो गंभीर जंगल में घोर अरण्य में पहुंचा तो देखा क्या कि एक बाघ उसके ऊपर में टूट पड़ा। अब वो बाघ उसको पकड़ना चाहता है और वो बहुत जल्दी से भागा। भाग करके कहां जाएगा? सोचा जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और बड़े मोटे पड़े पथ में चढ़ नहीं सकता, देखा जैसे एक कुआं पुराना है, उसके ऊपर में कुछ पेड़ों की टहनियां, पीपल और बरगद के कुछ टहनियां उस पर आ गई हैं, और घास से वो भरा पड़ा है, पानी सूख गया है, उसके ईंटे नीचे चले गए हैं, बस उसी को पकड़ कर तो नीचे झूल गया। बाघ की लपेट से पंजे से जरा थोड़ा सा नीचे चला गया और नीचे जाने की तैयारी कर रहा कूदने के लिए भीतर, इतने में देखा जैसे एक सर्प काला फड़ा ले गए, फंस फंस कर रहा है, अभी जाएगा, अभी उसे काटेगा, अभी वो मरेगा, ऊपर मृत्यु नीचे मृत्यु। और इधर जिस पेड़ की, पीपल की पेड़ की जो डाले हैं उसको पकड़ करके झूल रहा है, उसको कहीं से आकर के एक काला और एक सफेद चूहा उसे काटने लग गया। अब यदि वो पकड़ करके भी रहता है तो कितनी देर रहेगा? उसको चूहे काट देंगे, वो नीचे गिर जाएगा, ऊपर आ नहीं सकता, क्योंकि बाघ गर्जन कर रहा, नीचे में जा नहीं सकता, सांप है, चारों तरफ से मृत्यु मर्डर आने लग गई। इतने में जिस डाल को वो पकड़ा उसके ऊपर के एक टहनी में छोटे से मधुमक्खियों का छत्ता था, उसे रस्त पकड़ा था, तप तप तप, उसने अपनी जीभ जरा बढ़ा दी और उसके रस को, बुंद को उसने अपने मुख पर लिया। ओहो क्या मधुर, ओहो क्या मधुर, ये रूपक है, यही संसार है। अब देखिए कुआं ये भव सागर है, ये संसार ने? और काल ऊपर नीचे सप्त में, कभी कोई पता नहीं ये कब काल आ जाएगा। अभी कोई लड़ाई छिड़ गई और कितने लोग मारे गए, अभी रोज सुनते हैं कि कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटर इत्यादि से धक्का लग गया और परिवार का परिवार सब चकनाचूर हो गया, कोई खबर देने के लिए घर में भी नहीं रहा, कोई ठीक नहीं है कब मृत्यु आ जाए, बच्चे के लिए आएगी कि वृद्ध के लिए आएगी, कोई भी ठीक नहीं है। ये तो भवसागर, ये काल ऊपर नीचे चारों तरफ में, वो जो पीपल की डाल है वो कर्म हमारा है, पुण्य और पाप कर्म, उसी से ये शरीर बना है। हमने पूर्व जन्म में जो कि अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसका फल भोगने करने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। ये दोनों को हम भोग कर रहे हैं, इसको भोग करने के लिए बाध्य हैं। कर्म करने में स्वतंत्रता है किंतु फल भोगने में हम परतंत्र हैं। वो उसको बाप बाप कह करके भोग करा लेगा वो कर्म, आप उसको तनिक भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो चूहे हैं जो पेड़ की डाल को काट रहे हैं वो सफेद और काला चूहा, वो दिन और रात है, आपके आयु के आयु को ये काट रहे हैं। कुतरते कुतरते एक दिन में आपकी आयु से सोचिए कितनी उम्र है, 80 वर्ष, 80 वर्ष मैंने काट दिया, अब 2-4 वर्ष हैं, इसलिए आयु का कोई ठीक नहीं। और ऊपर से जो मधु का जो बुंद टपक रहा है वो क्या है, स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, परिवार का सुख, कभी ये सब संसार का रहे, इसी में हम सब झूले पड़े हैं। किंतु मृत्यु अनिवार्य है, ऊपर नीचे या कहीं से, आज न कल न परसों, न परसों में जरूर मृत्यु होगी। मृत्यु वही प्राणिनां ध्रुवः अद्यवा सतांते, मृत्यु वही प्राणिनां ध्रुवः, आज या 100 वर्षों के बाद में। ये कटु सत्य है सत्य और कटु भी सत्य है, निश्चित है, हुआ है, मरना है, बूढ़ा भी होना है, सब कुछ होना है। ये है भवाटवी, ये संसार है, ये अंधकूपा, ये संसार है, इसे निकल करके भगवान का भजन करना ही उत्तम है। विशेष करके आधी आयु, विशेष करके गवर्नमेंट की नौकरी इत्यादि में जो हम रिटायरमेंट होते हैं, हमारा जो होता है उस समय में 50 वर्ष की उम्र के बाद में, आजकल गवर्नमेंट ने शायद 60 वर्ष कर दिया है, तो उसके बाद में जरूर भगवान का भजन करना चाहिए निश्चित रूप से। भजन तो बचपन से होना चाहिए, तो उस समय जरूर होना चाहिए, सब भार लेकर के उन पर देख करके और भगवान का भजन करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी टीवी में प्रसारण हो रहा है रामलीला, शायद
रामायण
में रामलीला हो रही है, अभी आई थी ना रविवार को, और उसमें दिखलाया गया था वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप ये जो राज का पद तुम ले लो, तुम सब प्रकार से योग्य हो। उन्होंने कहा आपके जीते जी मैं कैसे राज्य लूंगा, ये मेरे लिए संभव पर नहीं है, मैं नौकर की तरफ में आपके सेवक के रूप में आपके पास में रहूंगा, और इंद्र भी यदि कोई दोष करेगा तो उसे भी पकड़ करके आपके चरणों में मैं लगा दूंगा, मैं सेवक की भांति रहूंगा, और इसी प्रकार से आपके रहते रहते मैं राजा बनूंगा, ये कभी भी संभव पर नहीं है। तो उन्होंने कहा जी भाई देखो, वशिष्ठ जी से मेरी बात हुई है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य सांसारिक भोगों में ही लगा देना ही जीवन का ये कर्तव्य नहीं, इसी में कर्तव्य की इति श्री नहीं समझनी चाहिए, इसके बाद भी कुछ चीज है और वही चीज असल है। हम जन्म लिया हमने विवाह शादी कर करके घर बसाने के लिए नहीं किया, विषयों का संग्रह करने के लिए ये नहीं किया, बल्कि हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम कुछ आत्मा को जान करके और इस जगत से सदा के लिए, इस सुख दुख के झमेले से सदा के लिए निकल करके और सुख और शांति हमको मिल सके। ये सब चीजें क्या होगी यदि सुख और शांति नहीं है, तो मनुष्य जो कुछ भी करता है सुख और शांति के लिए करता है, तो सुखी शांति न रहे तो क्या होगा। इसलिए रामचंद्र जी को उन्होंने कहा देखो भाई, हमने अब तक तो राज्य कार्य किया, बहुत सब सुख भोग लिया, और मैं कुछ आत्मचिंतन भी करूं, हमारा भी लोक और परलोक बने, ये भी तो मुझे देखना चाहिए, तो तुम ऐसा करो जैसे राज्य का भार ले लो और हमें कुछ आत्मचिंतन करने के लिए, परलोक के लिए कुछ रास्ता बनाने के लिए मुझे अवकाश दो, इसमें मेरी सहायता करो, मेरी सेवा करो। रामचंद्र जी इसका उत्तर कुछ नहीं दे सके, बस इसी जी ने कहा ठीक कह रहे हैं ये। अंत में अंततः चतुर्थाश्रम में अपने आयु के इस भाग में जरूर भगवान का भजन करने के लिए, बच्चों के ऊपर में जो योग्य और बड़े हो जाते हैं उनके ऊपर में संसार का भार दे करके, और उस समय कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए। आज मान लें कि 60 वर्ष के रूप में हम रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद में हम क्या करते हैं, एक नौकरी पहले से खोज लेते हैं, अब उसमें लग जाए, नहीं कुछ मिला तो बनिए कि यहाँ पर वो कुछ लिखा पढ़ी करने के लिए, अथवा कोई मिलिट्री से बड़े ब्रिगेडियर इत्यादि रिटायर्ड हो गए तो बड़े बड़े कंपनियों में कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष बन करके चले आते हैं, उनका समय कभी भी 80 वर्ष हो जाते हैं, इसके बाद में जब शरीर और मस्तिष्क काम नहीं करता है तो अंततः पागल के होने के पर उसको छोड़ देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है जिनको कोई काम नहीं है, भगवान का कोई भजन नहीं करता, अंत में पागल हो जाते हैं, कोई उनके लिए आश्रय अवलंबन नहीं रह जाता। विदुर महाराज विदुर जी जब इनको समझाया, धृतराष्ट्र के समझ में आया मैं कैसे चलूं, तब उन्होंने बतलाया तुम आज रात में ही आधी रात के समय में तुम हमारा हमको पकड़ करके और यहाँ से निकल चलो, तुम और गंधारी। बस आधी रात हुई, नहीं तो युधिष्ठिर को यदि पता लग गया तो खबर कभी नहीं जाने देंगे, इनका बड़ा आदर करते हैं, वो नहीं जाने देंगे, इसलिए रात में ही निकल जाना चाहिए। बस रात आधी रात हुई और उनको पीछे के द्वार से लेकर के उन दोनों को निकाल करके हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के बाद में ऋषिकेश चले गए, और वहां से गंभीर वन में जा करके और फिर अंत में उनको भजन का उपदेश दिया और वो भजन करने लगे और अंत में उनका निर्वाण हुआ। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जीवन में आयु का कुछ मूल्य है, वो विषयों के भोगने में नहीं है उसका मूल्य, बल्कि भगवत भजन में आत्म ज्ञान लाभ करके भगवत भजन करने में है। तत्पश्चात ये विदुर जी गए कौन ऋषि के पास, मैत्रेय जी के पास, और वहाँ उनका संलाप जो हुआ अत्यंत श्रीमद भागवत में बहुत ही सुंदर है, वैराग्य के लिए और ज्ञान तत्व के लिए। आत्मा क्या चीज है, ये भगवान का अंश है, ये अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरती है, और जब तक कि भगवान के निकट में पहुंच करके उनके चरणों के पास में नहीं मिलती है तब तक उसको सुख और शांति नहीं मिल सकता। इसके बाद में श्रीमद भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कपिल देवहूति का उपदेश और सब चीजें उनको सुनाया, वृत्तासुर का उपाख्यान समझाया और प्रहलाद महाराज जी का चरित्र इत्यादि वर्णन किया। वृत्तासुर के रूप में उन्होंने बतलाया एक महाराजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु महाराज, उनकी बहुत सी रानियां थी, पुत्र कोई संतति नहीं थी। विचार किया यदि पुत्र नहीं हुआ तो यह संसार क्या, अंधकार देखने लगे, राज इत्यादि सभी कुछ है, स्त्रियां हैं और सब कुछ होने पर भी उनको सुख नहीं है, पुत्र के लिए बड़े दुखी हाय हाय कर रहे हैं, जिनको पुत्र है वो भी दुखी, जिनको पुत्र नहीं है वो भी दुखी, और पुत्र होकर के मर गया तो भी दुखी, पुत्र नहीं हो रहा है। इतने में एक दिन उनके राज्य में अंगिरा के साथ में नारद जी आए, दोनों उनके राज्य वहां पर राज सिंहासन पर बैठाए गए और उनका आदर जत्न कर करके उनका पूजन इत्यादि किया। संभाषण करने के बाद में उन लोगों ने पूछा अंगिरा जी ने, भाई आप सुखी है तो हैं, राज्य में प्रजाएं तो सुखी हैं, राज्य के नौकरों को और सेना के लोगों को आप ठीक समय पर वेतन जब देते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार तो करते हैं, रानियों को आप अच्छी तरह से रखते तो हैं, वो आपके प्रति प्यार तो रखती हैं, कहीं खजाना इत्यादि ठीक से वसूल तो नहीं हो रहा है या कैसे चल रहा है, जो कुछ पूछना चाहिए सब उन्होंने पूछा, किंतु फिर भी देखते हैं कि आप कुछ सुखी नहीं हैं, आपके अंदर में कुछ दुखी होने का भाव है, आप अशांत क्यों हैं, क्या बात है। कि महाराज मैं सब प्रकार से सुखी हूँ, हमारी स्त्रियां बड़ी सुंदर रूपवती गुणवती हैं, प्रजाएं हमसे प्रसन्न हैं, हमारी सेनाएं हमसे संतुष्ट हैं, हम सबसे भातृवत व्यवहार करते हैं, प्रजाओं को मैं अपना पुत्र समझता हूँ, किंतु फिर भी एक मुझे दुख है, मुझे पुत्र नहीं हुआ, मुझे कैसे सुख मिलेगा, हमारा वो अग्नि संस्कार नहीं कर सकेगा, हमारे लिए वो पिंड नहीं दे सकेगा, कैसे हमारा कल्याण हो, आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो हमको पुत्र दे दीजिए। कहे भाई तुमको पुत्र उत्तर नहीं है, यह असंभव बात है, आप सब समर्थ हैं, आप कर सकते हैं। उन्होंने बहुत उनको समझाया जैसे आपको सुख नहीं होगा, किंतु माने नहीं। अंत में कही अच्छी बात है तो ठीक है, तू नहीं मानता है तो पुत्र तुमको हर्ष और शोक प्रद एक पुत्र होगा, हर्ष माने आनंददायक और दुखदायक माने दुख देने वाला होगा। उन्होंने सोचा जी कोई भी बात नहीं, हमको पुत्र तो होगा, हमारी बात कहीं नहीं मानेगा तो इसलिए कभी दुखी हो जाऊंगा तो अभी खुश जाए, पुत्र तो पुत्र ही है, बहुत ठीक, बड़े खुशी हो गए। खुश होने के बाद में ऋषि ने देखा जी इनको पुत्र नहीं है, चले गए और कुछ दिनों के लिए ही अपने योगाभ्यास से अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल करके और उनके स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कुछ फल दिया और कहा बड़ी रानी को दे देना, बड़ी रानी को उन्होंने खिलाया और खुद ही अपने आप जोग बल से उसके अंदर में काय के रूप में उसमें प्रवेश किया। काय प्रवेश एक होता है, शंकराचार्य जी के संबंध में भी ऐसा सुना जाता है, बड़े बड़े योगियों के लोग के संबंध में ऐसा देखा जाता है कि अपने आत्मा को निकाल करके जहां तहां भी वो प्रवेश करा सकते हैं। प्रवेश उसमें कर गए और ठीक समय पर वो बच्चे के रूप में पैदा हुए। बच्चा जब 5 वर्ष का हुआ तो बड़ा होनहार बच्चा, बड़ा सुंदर सुकान, तुतली तुतली बोली आने लगी, दो दांत यहाँ पर दांतुले उसकी निकल आई। अब घर में बड़ा भारी आनंद छा गया। पिता तो बस सब समय राज्य का कार्यभार छोड़ करके बस उसी को गोदी में चिपकाए रहते और अपनी स्त्री के पास में अपने राजमहल में स्त्री के साथ में बैठे रहते। उनकी जो और स्त्रियां थी बड़ी दुखी हो गई, हमारे दुख का कारण यही राजकुमार है, यदि राजकुमार उत्पन्न नहीं होता तो राजा महाराजा कभी हमसे भी कहते जो तुम्हारे साबुन के लिए, तेल के लिए, साड़ी के लिए कुछ पूछते, अब तो पूछते ही नहीं है हमसे। इसलिए यदि यह लड़का मर जाता तभी हम लोगों के लिए सुख और शांति हो सकती है, यह लड़का ही हमारे दुखों का कारण है। उन्होंने देखा जी एक दिन सो रहा है और रानी कहीं बाहर में थोड़ी दूर पर गई हुई है, बस सीप में चम्मच जैसे चीज में उन्होंने दूध में थोड़ा सा विष मिला दिया और उस बच्चे के मुख में डाल दिया। बच्चा पल्ले में खेल रहा था, झूल रहा था और बस पी करके बस साथ ही साथ में काला शरीर हो गया, जब वो मर गया लकड़ी की तरफ में उसका शरीर हो गया। रानी ने कहा जी बहुत देर हो गई, ये बच्चा रो नहीं रहा है, क्या बात है, उसको भूख नहीं लग रही, जाओ तो जी दाई आप उसे उठा करके हमारे पास में ले आइए। वो जब वहां पर गई देखा जैसे बच्चा तो कला पड़ा हुआ है और एकदम लकड़ी की भांति हो गया, वो मर गया है। तब छाती पीट करके वहीं पर पछाड़ मार करके गिर गई। प्राणी ने देखा जी क्या हो गया, क्या हो गया, दौड़ करके आई, देखा जैसे पल्ले में पड़ा हुआ और बच्चा मरा हुआ है, मुख से फेन निकल गया है और एकदम काला पड़ गया है। अब तो यह डा मार करके भी पछाड़ मार करके गिरी और वहीं पर अचेतन होकर के गिर पड़ी ग्लास के ऊपर में। राजा को खबर लगी, मंत्रियों के कंधे पर हाथ रख करके ब्राह्मणों के और उभी विलाप करते हुए हाथ पुत्र करते हुए वहां पर पहुंचे। रानीवास सारा एकदम रोने लग गया, कोई किसी को सांत्वना देने वाला नहीं रहा। ठीक उसी समय में अंगिरा ऋषि जो निकल करके गए थे नारद जी के साथ में, फिर दोनों वहां पर उपस्थित हुए, पूछने लगे भाई क्यों रोते हो, क्या बात हो गई, पुत्र उत्पन्न हुआ शोक हर्ष हुआ। और उन्होंने कहा था कि हर्ष और शोक प्रद होगा, मर गया शोक होने लगा, वो क्या समझे जेती है मरेगा। अंत में उन्होंने पूछा भाई क्यों रोते हो, क्या बात है, कोई नहीं बतलाए। किसी विशेष व्यक्ति से पूछा भाई किस लिए रो रहे हैं। राजा के पास ही में खड़े होकर के उन्होंने कहा जी भाई तुम नहीं समझेगा, तुम बच्चा है अभी, तुम लोग नहीं समझेगो, इसलिए तुम लोग चुपचाप चले जाओ। उन्होंने कहा हम लोग खूब समझेंगे, बतलाइए तो हम लोग इसलिए रो रहे हैं कि राजा मर गए, वो लड़का मर गया हमारा, उनका महाराज का लड़का मर गया। कहाँ मर गया, अभी तब देख रहे हैं कि सो रहा है यहीं पर, मरा तो नहीं, आप इससे बातचीत क्यों नहीं करती। आप कह रहे हैं हमारा बच्चा मर गया, कहते हैं कि हमारा लड़का मर गया, हमारा पुत्र मर गया, कहाँ मर गया, यही तो गया कहीं नहीं, यही तो पड़ा हुआ है। तो नहीं गया नहीं, किंतु इसकी आत्मा निकल गई है, आत्मा के लिए रो रहे या शरीर के लिए, ये बच्चा कौन है, शरीर इसका ये है पंच भौतिक मेटेरियल जो शरीर है वो है, न कि आत्मा को आप कह रही हैं। यदि आप शरीर के लिए रो रही हैं तो शरीर के लिए रोने की जरूरत नहीं है, बच्चा यहाँ पर है उसे बातचीत कीजिए, और यदि आत्मा के लिए रो रहे हैं आप लोग तो आत्मा को किसने देखा, जैसे काला है कि गोरा है, कितना फुट लंबा है, कैसे उसके रंग है, काला है कि गोरा है, कभी देखा उसको, हाँ तो नहीं तो फिर उसके लिए रोना क्या, जिसे कोई परिचय ही नहीं है उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, और जिसे परिचय थी तो वो आपके सामने पड़ा हुआ है। उसी के संबंध में कहानी और कहने लग गए, कबूतर की कल बतलाया था ना क्या, कहने लगे देखो पहले ही एक सुजग्य नाम के राजा थे, युद्ध में मारे गए और मारे जाने के बाद में सब लोग जब रोने लगे तो जम महाराज 5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके वहां आए और कन भाई किस लिए रोते हो, ठीक ऐसे उन्होंने प्रश्न किया और फिर उनको समझाने लगे आत्मा अजर्मर है, इसका जन्म और मृत्यु नहीं होता है, किसी शरीर में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं जन्म, और जब उसे निकल जाता है अपने कर्मों के क्षीण होने पर तो उसको कहते हैं मृत्यु। और पाप पुण्य का जो शरीर के द्वारा जो करता है उसका फल ये भोग करने के लिए बाध्य होता है। देखो यदि तुम क्या, यदि समस्त पृथ्वी के लोग इसके लिए रोए तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं आएगा, इसलिए रोने से तो भाई नहीं आएगा। दूसरी बात, जब हम जन्म लेते हैं तब छोटे होते हैं और अंत में धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तब पता नहीं चलता है कि कब हम बड़े हो गए कब हम बूढ़े हो गए। उसी प्रकार से शरीर में जब आत्मा रहती है तब इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में भी चली जाती है, तो उसके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक बात, कबूतर था और कबूतरी थी, दोनों जंगल में चरने के लिए गए और वहां पर सुंदर सुंदर, कल बतलाया था हमने, अच्छा, सुंदर सुंदर चावल के कण वहां पर बिखेर दिए गए हैं और बहेलिया ने वहां पर जाल लगा दिया और पेड़ के पीछे में छिप गया। थोड़ी देर के बाद में कबूतर कबूतरी आकर के और पेड़ की डाल पर बैठ गए, बड़े प्रेम से चोंच से चोंच मिला करके बड़े प्रीति के सहित में दोनों बातचीत करने लगे। इतने में स्त्री की नजर पड़ी चावलों के कणों के ऊपर, बहुत सुंदर सुंदर मोती जैसे ये कण बिखरे हुए हैं, चलो हम लोग दोनों मिलकर के चूमे और बच्चों के लिए भी कुछ घर में ले चले। पुरुष ने कहा, कबूतर ने कहा, देखो तुम भूल कर रही हो, इस जंगल में चावल के कणों की कहां से ये आएंगे, ये आना असंभव है, कहीं बनिए की दुकान नहीं है, कोई कृषक यहाँ पर खेत नहीं बो रखा जैसे कि चावल के कण आ जाएंगे, ये हो न हो इसमें षड्यंत्र है, इसमें तुम पकड़ी जाएगी तो और हम भी पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा आप लोगों को तो सब समय षड्यंत्र की बू आती है, मैं तो चली बस फुर्र करती हुई आकर के बैठ गई और दाना चुगने लगी, आप भी आ जाइए, इशारा करने लगी। इतने में देखा उसने जैसे ये तो एकदम खूब कणों को खाने में और उनको बुलाने में व्यस्त, बस झट जाल की डोरी खींच दी पेड़ के नीचे से और उसमें आबद्ध हो गई। अब तो ये बिलबिलाने लगी, बिलबिलाना सुन करके वो भी बिलाप करता हुआ ऊपर से उड़ करके जाल के पास में आ गया, वो जाल में आपत होने लगी और ये जाल के बाहर में दोनों परस्पर मिल करके और रोने लगी। ये बिलाप करने लगा कि हम लोग बड़े प्रेम के साथ में दोनों एक साथ में थे, आज हमारे बच्चे भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, यदि मैं मर जाता तो कोई बात नहीं थी, आप चली गई और बच्चों का परिवर्ष कौन करेगा, यह कहकर बिलाप करने लगा। और उधर भी वो भी खूब बिलाप करने लगी, हाय हाय हमारा क्या हुआ? बड़े सुख समय इतने दिन तक थे, जैसे हम स्त्री पुरुष एक जगह रहते हैं, यदि स्त्री यदि आगे चली गई तो पति रोते हैं और पति आगे चले जाते हैं तो स्त्री, इसी प्रकार से वो रोने लग गए दोनों मिलकर के। इतने में बहलिया ने देखा बहुत अच्छा समय है, बस देखा जिसे दोनों बिलाप करने में बस लगे हुए हैं, बस फिर संधान किया और धनुष पर बाण रख करके जैसा ऐसा महाराज उसकी छाती में लगा और वो भी गिर गया, रक्त निकलने लगा और एक सेकंड में मर गया। अब वो हंसता हुआ या ताली बजाता हुआ जाल को समेट लिया, उसके अंदर में जीवित कबूतरी को रखा और इसको भी पकड़ करके उसके दोनों के पैर बांध करके और झट लटका करके और चल पड़ा, क्रूर हंसी हंसता हुआ। ऐसे हमारे जो लोग मर गए उसके लिए हम शोक कर रहे हैं, परमार्थ के लिए चिंता नहीं किया, और इतने में बहेलिया आकर के काल रूपी बहेलिया और हमें भी मार करके लेकर के चला जाता है, हाय हाय वो भी खत्म हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को समय रहते हुए चेतना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, इस प्रकार का उसमें उपदेश दिया गया। चित्रकेतु महाराज जी को जब इस प्रकार से उपदेश दिया तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने नारद जी के से वही पर जो थे उनसे मंत्र लेकर के भगवान का और वहां पर भजन करना आरंभ कर दिया, बच्चे का संस्कार कराया और वन में चले गए वो और उनकी वो स्त्री, और जो बाकी स्त्रियां थी नारद जी के पास आई, हो हमने तो बड़ा भारी गलती, हमने बड़े भारी पाप किए, उस बच्चे को हमने विष दिया था, अब हमारी क्या गति होगी, अब हमारे लिए भी कुछ उपाय बतलाई। तो उनको भी मंत्र दे करके और कहा जैसे तुम्हारे पापों का इससे प्रायश्चित होगा और तुम भगवान का भजन करो। वो लोग भजन करते करते चित्रकेतु महाराज जी भजन करते करते सिद्ध हुए और सिद्ध होकर के समस्त लोकों में उनकी गति हुई और शिव के परम मित्र और उनके गुरु भाई थे वे हुए थे, और इन्होंने ही वृत्रासुर का फिर जन्म लिया था, शंकर जी की थोड़ा सा अपमान जैसा हो गया था, इसलिए चित्रकेतु महाराज जी विमान पर बैठे हुए सिद्ध थे वो, और घूमते घूमते कभी कैलाश में आए। कैलाश में आने पर देखा शंकर जी एकदम बैठे हुए हैं और पार्वती जी को, श्री जी तो नंगे हैं, सर्पों की वो पहने हुए हैं, और ये बाजीबंद भी सर्प के, गले में हार भी सर्प का, और पार्वती जी को लेकर के यहाँ पर बैठाया है, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब बैठे हुए हैं, देवता लोग, और उनका उपदेश दे रहे हैं भगवान की कथाओं का। वो आकाश से विमान मार्ग से उतरे, शिव जी के तो वो मित्र थे, बंधु थे, शिव जी देख करके बड़े प्रेम से उनसे मिले और मिल करके वहां बैठे। शिव जी ने उनका आवभगत किया, फिर बोले जैसे भाई तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तो तुम इस प्रकार से नंगे होकर के और अपनी प्रियतमा को और धर्म पत्नी को अपने यहाँ पर बैठा रखा और उपदेश कर रहे हो, ये उपदेश ठीक है? ऐसा तो होना उचित नहीं है। अरे भाई देवताओं की, ऋषि मुनि की सर ये सभा है, उसमें मर्यादा पूर्वक तो रहना चाहिए। ये कह करके कुछ हंसने लग गए। शंकर जी ने इसको बुरा नहीं माना क्योंकि उनके मित्र थे, किंतु पार्वती जी को लग गया बुरा। स्थिर बुद्धि वाले लोगों को ऐसे ही बुरा लग जाता है अच्छी बात कहने पर भी। बस वो कुछ अप्रसन्न होकर के बोली, ये जिसको ब्रह्मा जी कुछ उपदेश नहीं दे सकते, बड़े बड़े महर्षि लोग यहाँ पर हैं, इनको उपदेश शंकर को नहीं दे सकते। मालूम होता तुम ही इनके गुरु हो और इनको उपदेश देने के लिए आए हो, तुम इनका अपमान कर रहे हो और हमारा अपमान नहीं। अभी तुम जा करके तुम राक्षस होकर के जन्म ग्रहण करो, दैत्य कुल में तुम्हारा जन्म हो, बड़े भयंकर होकर के जन्म हो। तो वो हंसने लग गए चित्रकेतु महाराज जी। शंकर जी कुछ बिगड़ गए, बोले ये तो तुमने ये क्या किया, यदि ये अभिसंपात तुम्हारा नहीं लेते और तुम्हें भी उल्टा रूप में अभिसंपात कर देते, साफ देते, तो तुमको क्या हो जाता? ये तो महान पुरुष हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं, ऐसा भक्त होना जगत में दुर्लभ है, तत्व ज्ञान से संपन्न है, ये कहीं भी जाएंगे इनको सुख, नरक में भी जाएंगे इनके लिए दुख की कोई बात नहीं है, ये अजर अमर है और ये सब समय ये चीज को जानते हैं, इसलिए इन्होंने तो तुमको साफ नहीं दिया, हंस करके उन्होंने ले लिया, एवं मस्तु कर दिया, और तुम थोड़े से में ही तुम घबरा गई। जिस मनुष्य को अपने मान अपमान का ही बोध है, वो क्या भगवान का भजन कर सकता है? वो तो सब समय चिंता में अशांति उसका चित्त रहेगा। उनको कुछ समझा करके, कुछ कह करके, और फिर चित्रकेतु महाराज जी के सामने खड़े हो गए। चित्रकेतु महाराज जी वहां से फिर वृत्तासुर होकर के उन्होंने जन्म लिया और वहीं से भगवान का भजन किया। अंत में इंद्र के द्वारा वो मारे गए, और उसमें इतना उनका उपदेश सुंदर है जो श्रीमद् भागवत में एक अद्भुत व्यापार है। उन्होंने भगवान के लिए स्तुति किया कि प्रभु आप जल्दी से जल्दी ये शरीर को खत्म इंद्र के द्वारा कराओ। उन्हीं को मारने के लिए वज्र बना था दधीचि मुनि के हार से, जो अभी नैमिषारण्य के पास ही में मिश्रिक नामक एक स्थान है, वहीं पर गाय के द्वारा अपने शरीर के मांस और इस सब को चटवा दिया था लोक उपकार के लिए, और उसे वज्र बना था, उस वज्र से इंद्र ने इनको वध किया था। उस जिस समय वध हो रहा था उस समय ये कह रहे हैं प्रार्थना भगवान से, ये प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म पदवी नहीं चाहिए, रसातल का पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मुक्ति की भी जरूरत नहीं है, मैं आपके चरणों की सेवा का अतिरिक्त और कुछ भी लेना नहीं चाहता हूँ। अंत में कहा जिस प्रकार से कि अजात पक्षाई मातरम खगा, जिस प्रकार से अजात पक्ष बने, जिस बच्चे चिड़ियों के बच्चे होते हैं उनके पंख नहीं होते हैं और वो माता उसके और पिता चले जाते हैं कहीं उनको खाने के लिए कुछ लाने के लिए, और सब समय ये चिंता करते हैं कोई आकर के हमें खा न जाए, और माता पिता हमें भोजन कब लाएंगे, इसलिए वो छटपटाते हैं मन के द्वारा, सब समय उनका स्मरण करते हैं। यदि पत्ता भी कहीं डोल जाता है तो उसमें मेरी मैया आ गई, मैया के लिए छटपटा रहे हैं, बोल नहीं सकते, मन ही मन चिंता कर रहे हैं, प्रभु हे प्रभु मैं आपको इसी बच्चे की तरह मैं आपके लिए मैं चिंतन करूं। फिर सोचा इसमें कुछ स्वार्थ है, बच्चा अपने दाना के लिए, खाने के लिए, अपने माता पिता के लिए चिंता कर रहा है और कुछ भयभीत हो रहा है, इसलिए इसमें तो हमारा स्वार्थ है, भगवान के भजन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उन्होंने सब दूसरा एक उपमा दिया, जिस प्रकार से एक बछड़ा है, माँ उसकी चरने के लिए चली गई और चर करके शाम को आई, और उस समय में जिस प्रकार से बच्चा दूध पीने के लिए मचलता है और उसका स्वामी उसका उसकी रस्सी खोलता है और वो फिर कुत्ता हुआ अपनी माँ के पास में जाता है, खोलने नहीं देता है और डांडा करता है, उसी प्रकार से भगवान के लिए हम चिंतन करें और उसके तरफ से हम कीर्तन करें, भगवान को पुकारें। फिर भी इसमें आया जैसे वो तब बछड़ा अपने दूध के लिए ऐसा करता है, उसका भी स्वार्थ है। फिर तीसरा उदाहरण दिया जिस प्रकार से प्रिया अपने प्रियतम से मिलने के लिए बिना स्वार्थ उसकी सेवा करने के लिए उसकी सेवा करती है और उसके लिए पुकारती है, उसका मन ही मन चिंतन करती है, उसी प्रकार से हमें काय मन और वचन के द्वारा मैं भगवान का भजन कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। अंत में उन्होंने यही वर मांगा कि जहाँ जहाँ हमारा जन्म हो भक्तों का संग मिले और उस संग में हम भगवान का भजन करके हमारा जीवन अतिवाहित हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने वर मांगा। इसके बाद में प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान आया, अब और 15 मिनट। प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान आया, उसके पहले अजामिल का, अजामिल के उपाख्यान में उन्होंने ये दिखलाया जितना भी कोई पापी व्यक्ति हो और उसको भजन करने का भी समय नहीं मिला हो तो कलयुग में यदि भगवान का नाम उच्चारण वो करता है, सीधा नाम उच्चारण न कर सके, यदि उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यदि जैसे तैसे भी मधुर मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर्मात्म तारेत कृष्णना। जैसे कैसे भी यदि श्रद्धा भी नहीं हो, चलते फिरते उठते बैठते छींक देते समय जम्भाई आते समय राम राम कह दिया, टट्टी देखते हैं राम राम कह दिया, किसी का नाम राम रख दिया है या नारायण रख दिया उसका नाम उच्चारण यदि कर दे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। और प्रतिपूर्वक यदि कोई भगवान की सेवा करे तो कहना क्या बात है। उदाहरण के स्वरूप दिखलाया अजामिल, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण का लड़का था, बड़ा सदाचारी था, माता पिता का भी सेवक था। एक दिन माता पिता के सेवा के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाने के लिए गया और किसी बेच्या को देख करके आसक्त हो गया और ऐसा आसक्त हो गया कि घर के सब चीजों को बेच करके उसके पास में पहुंचा दिया और उसके संग में अपनी स्त्री को भी छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ करके और उसी के साथ में रहने लग गया। 80 वर्ष तक उसके साथ में रहा और उसके 8-10 बच्चे पैदा हुए और उस समय में अर्थ के लिए डकैती करता, चोरी करता, मदिरा पान करता, झूठ बोलता, सब कुछ करता, जो कुछ व्यभिचार पाप है, कोई पाप उसने बाकी नहीं रखा। अंत में एक जो 8वां बच्चा हुआ 80 वर्ष की उम्र में और उसका नाम रख दिया नारायण। इतने में उसकी मृत्यु आई और मृत्यु आने पर जम के दूत वहां पर उपस्थित हुए तो उसको पकड़ करके ले जाने लगे जमराज के यहाँ नर्क ले जाने के लिए, भोग करने के लिए। उस समय नारायण नाम के 4 दूत उपस्थित हुए, नारायण ये 4 दूत और 3 दूत आए थे जमराज के, तन से मन से और वचन से, ये 3 प्रकार से पाप होते हैं, इन पापों को दंड देने के लिए पकड़ने के लिए वो जमराज के दूत आए। ये केवल उपमा नहीं है, यह बात ठीक है, बहुत से ऐसे सत्य प्रमाण मिलते हैं जिसमें ऐसा सब देखा जाता है कि ऐसा होता है। अब वो इनके 3 दूत जब पकड़ करके ले चलने लगे तो भगवान के विष्णु के दूत शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां पर उपस्थित हुए और उनको मना किया, भाई कहाँ ले जा रहे हो, जमराज के पास में इनको दंड दिलाने के लिए। उन्होंने कहा जैसे भाई तुम लोग जानते नहीं हो ये मरते समय इसने नारायण नाम उच्चारण किया था। हाँ उच्चारण तो किया था किंतु अपने लड़के के लिए, भगवान के लिए नहीं उच्चारण किया था, इसलिए हम इसको ले जाते हैं। उन्होंने कहा जैसे भी हो संकेत चंग परिहास चंग सौभम हेललम एवं बा, संकेत से नाम करे विष्णु का, भगवान का, राम कृष्ण इत्यादि, किसी एक चीज का नाम रख दिया, कुत्ते का नाम या किसी गाय का नाम या कुछ नाम रख दिया, बैल का नाम, भगवान का नाम, और उसको उच्चारण किया अथवा अश्रद्धा पूर्वक नाम किया, गिरते गिरते कैसे जैसे भी कर दे, किसी को क्रोधित करने के लिए उसने कर दिया, जा रहा कोई राम राम कह रहा है और वो झूठ फूट करके जान बुझ करके बिगड़ जाता है राम राम कहने से, राम राम मत कहना है? और उनको गाली गलौज कुछ थोड़ा सा ऐसा देता है, अर्थात तो ये नाम करें इसलिए। ऐसा किसी को चिढ़ाने में भी भगवान का नाम किया जाए तो भी उसका फल हो जाता है। यहाँ तक दिखलाया कि कोई एक सुअर था बनेला, जंगल में एक मुसलमान जा रहा था और वो टट्टी करने के लिए बैठा, और इस बनेले सुअर ने इस व्यक्ति को देखते हुए टट्टी फिरते हुए और उसको सीधी नाक में गया और उसको दो खंडों में चीर दिया अपने दांत से, और मरते समय सुअर को देख करके वो कहता कि हाराम हाराम, और उसे उसकी सदगति प्रभु ने देखा, ये हाराम हाराम कह रहा है, उसकी मृत्यु हो गई और वो मुक्त को प्राप्त हो गया। ऐसा व्यक्ति भी, इसलिए ये तुम्हारे अधिकार की बात नहीं है, इसने भगवान नारायण का नाम किया है जैसे अवश्य होकर के अपने पुत्र के लिए भी किया है, तो आप लोगों के अधीन अब ये नहीं हो सकता है। दोनों में झगड़ा हुआ, अंत में विष्णु को दितुनु ने पीट पाट करके भगा दिया। वो लोग जम जी के पास में गए, जमराज के पास में कहा जैसे अब इसकी जरूरत नहीं हमें, ये पापी व्यक्तियों को भी छुड़ाने के लिए चातुर्भुज वाले आए, वो कौन है? हम तो समझते हैं कि पृथ्वी के मालिक आप ही हैं, दंड देवता आप ही हैं, किसी को छोड़ने वाले आप हैं, ये कौन है? उन्होंने सबको सुन करके विचार किया और कहा देखो हमारे प्रभु भी भगवान हैं, उनके दूत यदि भगवान का नाम यदि कहीं कोई ले जगत में मरते समय, तुलसी का पत्ता और गंगा जल यदि मुख में देते समय में, या किसी भी प्रकार से उनके मुख से नाम उच्चरित हो गया, खबरदार उसके पास में नहीं जाना। जिनका सिर कभी भी भगवान के मंदिर में या भगवान के लिए कभी भी नमित नहीं होता है, जिनके मुख से कभी भी भगवान नाम नहीं निकलता, जिनकी कान में भगवान का नाम नहीं जाता है, ऐसे दुष्ट लोगों को तुम पकड़ करके ले जाना। और यदि किसी प्रकार से भी कान में नाम गया या मुख से नाम उच्चरित हो गया भगवान का, उसके पास में खबर मत जाना। अंत में उन्होंने कहा ये हमारे लिए दंड नहीं है, हमारे ये प्रभु के ही अधीन है, उनकी जैसी इच्छा हो करेंगे।